नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु आयातुल्ला अली रेजा अराफी को देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नामित किया गया। खाड़ी क्षेत्र में ईरान के हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले तेज किए। ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर कई देशों में शोक सभाएं और विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसक प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मदुरे में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, यह कार्यक्रम राज्य के विकास यात्रा में एक गौरवशाली अध्याय। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज और भारत का मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु आयातुल्ला अली रेजा अराफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार आयातुल्ला अली रेजा अराफी को अस्थायी नेतृत्व परिषद के न्यायविद सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये परिषद ईरान की संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तराधिकारी चुने जाने तक सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है। ईरान की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक परिषद के एक धर्मगुरु शामिल होते हैं। खामेनेई की मौत के बाद ये परिषद संयुक्त रूप से देश का नेतृत्व करेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका इसराइल के हवाई हमले जारी हैं। इसराइल ने कहा कि वह तेहरान के प्रमुख स्थलों तक अपने अभियान का विस्तार कर रहा है। तेहरान में कई विस्फोटों की खबरें हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल पश्चिम एशिया में अमरीकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में दुबई सहित कई ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। इसराइल की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि इसराइल के बेत शेमेश शहर में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। वहीं 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ईरान के हमलों में अब तक 3 लोग मारे गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 152 को रोक दिया गया, जबकि 13 समुद्र में गिर गईं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 541 ड्रोन भी दागे। इनमें से 506 ड्रोन नष्ट कर दिए गए और 35 ड्रोन संयुक्त अरब अमीरात पर गिरे। इनमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3-3 लोगों की मौत हो गई और 58 अन्य घायल हो गए। अबुधाबी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हमला करने वाले एक ड्रोन को रोक दिया गया। एक अलग घटना में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। दुबई में 2 घरों के आंगन में ड्रोन के मलबे गिरने से 2 लोग घायल हो गए। अमरीका के सैन्य अड्डों वाले देश कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत ने भी अपनी ओर से दागी गई मिसाइलों को रोकने की सूचना दी। कुवैत की सेना ने कहा कि ईरान ने 97 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे पहले अली अल सलेम हवाई अड्डे पर मलबा गिरने से 3 कुवैती सैनिक घायल हो गए। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से 1 की मौत होने और 32 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। बहरीन में गृह मंत्रालय ने बताया कि ड्रोन हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने ईरान पर सऊदी अरब के खिलाफ हमले शुरू करने का आरोप लगाते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में शोक सभा और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। शिया समुदाय ने खामेनेई की मौत पर शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। राजधानी तेहरान सहित ईरान के अन्य शहरों में लाखों लोगों ने खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस्फहान और जनजन की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। ईरान के बाहर भी एकजुटता देखने वाली सभाएं हुई। इराक की राजधानी बगदाद में लोग शोक व्यक्त करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए। पाकिस्तान के कराची में हिंसक झड़पों में 10 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। यह घटना अमेरिका वाणिज्य दूतावास की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के बाद हुई। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर लोग शिया समुदाय से हैं। वे अमेरिका इसराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबरों के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। कुवैत में भारतीय दूतावास हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता कर रहा है। दूतावास ने कहा कि वह संबंधित स्थानीय अधिकारियों, फंसे हुए यात्रियों के ठहरने वाले होटलों के प्रबंधन और संबंधित विमानन कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है। दूतावास ने आश्वासन दिया है कि भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के बीच परामर्शों का पालन करने की अपील की है। इन दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे सावधानी बरतें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। दूतावासों ने किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में कुंभकोणम, येरकोड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर शामिल हैं। इन ट्रांसमीटरों से क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार होगा।
आई एम प्लीज टू इनॉग्रेट आकाशवाणी न्यू FM रिले ट्रांसमीटर इन कुंभकोणम, येरकॉड एंड वेल्लोर। दीज रेडियो स्टेशन विल बी डेडिकेटेड टू योर सर्विस फ्रॉम टूडे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में बदलाव होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और लाखों लोगों का जीवन बेहतर होगा।
In the last 12 years, 74 projects worth almost 12,000 crore rupees were completed. These created thousands of jobs and new economic opportunities for Tamil Nadu.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की एक रैली में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में DMK सरकार पर हर क्षेत्र में विफल रहने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि केवल NDA ही एक कुशल सरकार दे सकता है और राज्य के विकास में और प्रगति ला सकता है।
The people know that this election is a turning point for the state. I can see that Tamil Nadu has made up its mind. The people have decided that DMK has to be sent out. The next government of Tamil Nadu will be an NDA government.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिख समुदाय की गरिमा और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित हिंदी चादर सभा को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने समुदाय के लिए कई कल्याणकारी पहलों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सभाएं सामाजिक एकता को मजबूत करती हैं और गुरुओं के आशीर्वाद को दर्शाती हैं।
आज हम सब हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी पर्व पर उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। भारत का इतिहास शौर्य, समन्वय और सहयोग का इतिहास है। जब हमारे गुरुओं ने त्याग की पराकाष्ठा की, तब उस दौर में हमारी सामाजिक एकता की बहुत बड़ी भूमिका थी।
इस कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री अमित शाह ने धर्म की रक्षा में शहीद हुए गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के बलिदान अतुलनीय हैं। श्री शाह ने पंजाब में हो रहे धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि गुरु तेग बहादुर की शहादत को राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और नवी मुंबई में एक अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। पिछले 2 दिन में लाखों श्रद्धालु इस सभा में शामिल हुए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मुंबई की सफल यात्रा के बाद आज शाम दिल्ली पहुंचे। वे भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कल नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। वे व्यापार और निवेश, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा जनसंपर्क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जारी सहयोग की भी समीक्षा करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में दो बड़े सुधार लागू करने जा रही है। कृषि मंत्री ने उत्तराखंड के मसूरी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रही है।
दो रिफॉर्म जल्दी होने वाले हैं, एक सीड एक्ट हम पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, एक पेस्टिसाइड एक्ट। किसान को प्रमाणित कैसे बीज मिले, जो घटिया बीज देगा उसके खिलाफ कड़े कानून का हम प्रावधान कर रहे हैं, जैसे 30 लाख से 50 लाख रुपया तक जुर्माने की राशि। और वो पेस्टिसाइड एक्ट में अगर किसी ने गलत पेस्टिसाइड दिया तो उनके खिलाफ भी सख्त सजा के प्रावधान हम लोग रख रहे हैं।
श्री चौहान ने कहा कि एक भारत पहल के अंतर्गत किसानों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक AI आधारित प्रणाली विकसित की गई है। मध्य प्रदेश सरकार कल बरवानी के आदिवासी क्षेत्र में अपना पहला कृषि मंत्रिमंडल आयोजित करेगी। ये कदम किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों को सशक्त बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेंगे। श्री यादव ने कहा कि इसमें पशुपालन, बागवानी सहित 17 विभिन्न विभाग शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करने पर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के नागपुर में राउल गांव स्थित SBL एनर्जी लिमिटेड में हुए भीषण विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान के महत्व पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कोलकाता में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया है। रॉस्टन चेस ने सर्वाधिक 40 रन बनाए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट हासिल किए। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। वहीं दिल्ली में आज दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। जिम्बाब्वे के 154 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 13 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला अली रेजा अराफी को देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नामित किया गया। खाड़ी क्षेत्र में ईरान के हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले तेज किए। ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर कई देशों में शोक सभाएं और विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसक प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मदुरे में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, ये कार्यक्रम राज्य के विकास यात्रा में एक गौरवशाली अध्याय। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।